शांति। सूचना है सबसे पहले GJ 24 AA 2162, ये गाड़ी जिस किसी भी की भी है अभी ही तुरंत यहाँ से उठ करके वो गाड़ी हटाएंगे। ससी दीदी की गाड़ी निकालनी है GJ 24 AA 2162। थोड़ा स्पीड करेंगे, दीदी को जाना है जल्दी से प्रोग्राम में। ओम शांति। हम सभी के बीच में प्यारे बाप दादा की अमूल्य रतन आदरणीय प्रवीणा दीदी जी उपस्थित हैं। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। प्रवीणा दीदी, आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, करतल ध्वनि से भी स्वागत करेंगे, स्वागत है। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को गुजरात में सूरत में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में 1981 यानी 45 ईयर्स हुए हैं। साथ में विशेष आपका ये परम सौभाग्य रहा हुआ है संस्था की चीफ परम श्रद्धे दादी जानकी जी के अंग संग आप रहे हैं, और विदेशों में आपने दादी जी के साथ परिभ्रमणा करके दादी जी को देखते हुए उनकी टोटल देखभाल करते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दादी जी के साथ रहकर के सेवाओं में आपका भी योगदान रहा है। ताली बजाएंगे इस बात के लिए। और दादी जी 104 साल के हुए और इस विश्वविद्यालय जो कहते हैं योग से आयुष्य बढ़ती है, वो दादी जी एग्जाम्पल हम सबके बीच में बन करके गई हैं। और इस विश्वविद्यालय का गौरव जो बढ़ाया है इस उम्र में, उसके भी आप गौरव बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ में आपने देश विदेश में कई सेवा केंद्र खोलने की निमित्त भी आप बने हुए हो। वर्तमान समय शांतिवन स्थित अकाउंट डिपार्टमेंट में आप सेवाएं देती हैं, और अभी जहाँ कहीं भी हमारे बहुत सारे स्थान हैं, मानसरोवर, आनंद सरोवर है ना, तपोवन, अभी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, जहाँ भी सेवाएं होती हैं, प्रवचन, क्लासेस, शिविर, सब में आपका योगदान रहता है। तो ऐसी बाबा की अमूल्य रतन आदरणीय प्रवीणा दीदी को निवेदन है, हम सबको ज्ञान रतन से झोली भरेंगी। आज का आपका टॉपिक है डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। आदरणीय प्रवीणा दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम ऐसी स्थिति की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए ज्ञान से ज्यादा अनुभव की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि डबल लाइट स्थिति आत्मा की है, तो आत्मा को भारी करने का कारण क्या है, भारी होने का कारण क्या है, आत्मा भारी क्यों हो जाती है? हाँ, व्यर्थ बातों के कारण। अच्छा, और व्यर्थ चिंतन के कारण, देह अभिमान के कारण। और आत्मा को कौन भारी करता है? विकर्म और माया भारी करती है, और कौन भारी करता है? जो आत्मा डबल लाइट नहीं हो पाती है, पाप कर्म भारी कर देता है, पर चिंतन भारी कर देता है। बड़ी अच्छी बातें हैं। और उल्टा सुलटा कर्म करते हैं, सुलटा कर्म करने से तो भारी नहीं हो जाती है, श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो आत्मा भारी हो जाती है। तो हमें ये सब बातें पता है ना, तो हम तो सभी डबल लाइट है ना। जब हमें कारण का पता है तो निवारण कर ही सकते हैं। आत्मा को भारी करने वाला है मैं और मेरा। जहां जहां मैं बोलते हैं वहां आत्मा जरूर याद आनी चाहिए। जब अभिमान वाला मैं बोलते हैं तो अभिमान क्या करता है? भारी कर देता है। जब मेरा शब्द बोलते हैं तब कौन याद आवे? बाबा याद आवे। जहां अटैचमेंट होती है वो मेरा शब्द याद आता है तो वो भारी हो जाते हैं। दूसरा आत्मा को भारी करने वाला है हमारा अतीत, पास्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल कहते हैं ना। तो हमारा अतीत का बोझ है हमारे पास। कोई घटनाएं घट चुकी हैं, वो पास्ट हो गई हैं, लेकिन हम उसको लेकर के चल रहे हैं। तो बोझ लेकर के चल रहे हैं ना, और बोझ है तो उड़ सकते हैं। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई पास्ट है तो उसको क्या करें? क्या करें? खत्म हो जाता है, बाबा के ऊपर छोड़ देना है, बाबा को लेटर लिख करके दे देवे। वो फाइल डिलीट कर दो, अच्छी बात है। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। पास्ट की बातें हमारे हाथ में हैं, जो पास्ट को हम लेके आवे, अभी भी लेके चले। पास्ट को लेकर के चलना माना वर्तमान को बिगाड़ना, माना हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं। तो जो भी बातें हमारे जीवन में घट चुकी है, हो गई है, तो उसको फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। जिनके साथ हमने कर्म का हिसाब किताब बनाया है तो उसको माफ कर दो और माफी दे दो। जब तक हमने उस आत्मा को माफ नहीं किया है तब तक बाबा से योग नहीं लग सकता है। योग में बैठने के टाइम पर सबसे पहले कौन याद आता है? जिसके साथ हिसाब किताब होता है वो याद आते हैं ना। या तो बाबा याद आएगा या तो दुश्मन याद आएगा। हिसाब किताब तो दुश्मन के साथ ही बनता है ना। तो बैठे हैं बाबा को याद करने के लिए, और याद किसको कर रहे हैं? जिसके साथ कोई घटना घट चुकी है, पास्ट हो गया है, तो वो पास्ट, वो बोझ हमें भारी कर देता है। कभी कभी हम उसको भूल नहीं पाते हैं। जो घटना घट जाती है उसको हम भूल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से तपस्या करके उसको भुलाना पड़ता है। बड़ों की मदद लेकर के, बाबा की मदद लेकर के, एक्स्ट्रा टाइम खुद को दे करके वो बात को हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, नहीं तो हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। डबल लाइट स्थिति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बोझ है आत्मा के ऊपर, भारीपन है। तो बेन ने कहा बाबा को लेटर लिख करके दे दो, लेकिन मैं कहती हूं जिसके साथ हमारा हिसाब किताब हुआ है, चाहे वो 10 साल पहले हुआ है, 15 साल पहले हुआ है, उस आत्मा को ही लेटर लिख करके दे दो। हो सकता है? कई बार नहीं होता है, लेकिन वो भी कभी कभी पहुंचती नहीं है हमारी वो सूक्ष्म में माफी। एक बार ट्राई करो, लिख करके दे दो। कई बार क्या होता है कि हमारे से कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो वो हमारे से हुई गलती का भी हम बार बार पश्चाताप करते रहते हैं। तो आत्मा को उड़ने नहीं देता है वो पश्चाताप भी। और बाबा ने एक बार कहा था कि अगर गलती हो गई और पश्चाताप में शरीर छूट गया तो क्या गति होगी, आप सोचो। खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है या पश्चाताप में शरीर छोड़ना है? संगम युग का समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कहां वो समय हमारा पश्चाताप में न बीते, कहां वो समय हमारा संघर्ष में न बीते। मौज का समय है, मोहब्बत का समय है, मेहनत का समय थोड़ी है। तो ये बात हमें अंडरलाइन करनी है कि ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। समय की वैल्यू यदि बढ़ानी है तो खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। खुद के अंदर आदर्शों को भरना पड़ेगा, तब हमारी जीवन वैल्यूएबल बन सकती है। तो बोझ वाला हल्का नहीं होता है। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है तो कभी बैठ करके, एकांत में बैठ करके खुद से बातें करो। डायरी पेन लेकर के जर्नल को लिखो, अपनी डायरी में लिखो कि मुझे किस किस बात का बोझ है, कौन सी बातें मुझे पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा। लिखना बहुत आवश्यक है। रियलाइजेशन करने के बाद परिवर्तन आता है। बिना रियलाइजेशन परिवर्तन नहीं आ सकता। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कोई गलती किया है, अभिमान होता है ना, हमें वो गलती महसूस करने से भी रोकता है। हमेशा हम क्या करते हैं, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। दारी जान की हमेशा कहती थी कि एक अंगुली, बाबा भी कहते थे कि एक अंगुली उसकी तरफ है, 3 अंगुली किसके तरफ है, खुद के तरफ है ना। उनका 1% दोष है, मेरा 3% दोष है। दूसरों को दोषी ठहराते हैं और हम वो अलबेलेपन में रहते हैं, अपने आप से धोखा करते रहते हैं, एक्चुअली खुद को ठग रहे हैं। तो जो स्थिति हम बनाना चाहते हैं वो स्थिति हमारी बन नहीं पाती है। तो जब भी हम योग में बैठे तब कोई ना कोई लक्ष्य को लेकर के बैठो, फिर चेक करो योग पूरा होने के बाद क्या मैंने लक्ष्य को हासिल किया। हमारे पास बुद्धि बल है, हमारी बुद्धि में भी बोझ है। बोझ कहाँ रहता है? बुद्धि में रहता है। दादी जानकी हमेशा कहा करती थी कि कभी कभी बैठ करके बुद्धि की सफाई करो। बुद्धि में भी दो बातें हैं, एक पुरानी बात और एक पराई बात। हमारी बुद्धि में पराई बात भी है और पुरानी बात भी है, जिसकी वजह से बुद्धि को एक्यूपाई करके रखा हुआ है वो बातों ने स्पेस को। हाँ, दीदी ने सुबह बताया डिलीट करना है फाइल को। तो जो पराई बातें हमारी बुद्धि में, दूसरों की बातें बुद्धि में लेकर के हम चल रहे हैं, तो बुद्धि में तो स्पेस नहीं है ना। और फिर हम क्या कहते हैं, बाबा की मुरली याद नहीं रहती है। मुरली भी कहां ग्रहण होती है? बुद्धि में। तो वो बुद्धि में स्पेस ही नहीं है तो वो ठहरेगी थोड़ी। इसीलिए बुद्धि को साफ करना है। पराई बातें अगर हमारी बुद्धि में है तो उस फाइल को भी डिलीट करना है, और पुरानी बातें जो बार बार हमें खींच करके वापस ले आती है। हम चाहते नहीं है कि वो बातें याद करें। कई बार, एक बार मेरे जीवन में भी पेपर आया और वो पेपर को पार करने के लिए मैंने एक युक्ति अजमाई थी कि वो बात बार बार याद आवे, इससे तो अच्छा है कि मेरे जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटी हैं, जो अच्छे अनुभव हमारे जीवन में हुए हैं, वो बातों को याद करो। वो बातों को याद करने से शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो वो बातें माइनस होती जाएगी ना, जो बातों से हम डिस्टर्ब हुए हैं। तो इसीलिए पराई बात और पुरानी बात को डिलीट करना बहुत बहुत जरूरी है। मोबाइल हमें मैसेज देता है कि तुम्हारा मेमोरी फुल हो गई है, अब क्या करो? वहां चेक करना आता है कि ये फाइल काम की नहीं है, ये वीडियो काम का नहीं है, डिलीट करो डिलीट करो। सफाई करनी पड़ती है ना, उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। तो बुद्धि की भी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि भारी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे। एक पंछी को उड़ना है, लेकिन आपने देखा है पंछी कभी कुछ लेकर के उड़ता है क्या? समझो वो पत्थर लेकर के उड़ेगा तो उड़ सकता है? नहीं। उड़ना है तो एकदम हल्का चाहिए। एक बार एक पंछी के पांव में सोने की चेन बंधी हुई थी और वो सोने की चेन का वजन के कारण थोड़ा उड़ता है वापस आ जाता था, थोड़ा उड़ता है वापस आ जाता था, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता था। फिर उसने सोचा कि ये चेन को छोड़ो तो मैं उड़ सकता हूं, और चेन को छोड़ा तो उड़ सकता है। हमारे पास भी ऐसे सोने की चेन बहुत है जो हमें वापस खींच करके ले आती है, और वो है मैं और मेरा की चेन। कभी बैठ करके चेक करना कि कौन सी ऐसी सोने की चेन मेरे पास है जो मुझ आत्मा को भारी कर देती है और उड़ने नहीं देती, वापस वापस ले आती है। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए छोड़ना पड़ता है। बाबा कहते छोड़ो तो छूटे। डाली पकड़ करके बैठे हैं हम, तो कोई छुड़ाएगा? हमें अपने पांव को डाली से छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उड़ेंगे। तो हमारे संस्कार को भी चेक करना है कि हमारे संस्कार भी कहां ना कहां हमें वापस ले आता है। तो भट्टी जब करते हैं हम, वो अपनी चेकिंग के लिए होती है। आप वहां से समय निकाल करके यहां आते हो, यहां आपके पास और कोई कारोबार नहीं है, है ना? न बहनों को कोई किचन का काम है, न भाइयों को अपना खेती बाड़ी का या बिजनेस का काम है, तो या फारिग होकर के आए हैं ना, या कोई ना कोई चिंता को लेकर के आए हैं, तो चिंता भी हमें उड़ने नहीं देती है। मन, क्योंकि डबल लाइट माना एक मन को हल्का करना है और बुद्धि को हल्का करना है। मन लाइट और बुद्धि लाइट। मन में अगर चिंता है, डर है, भय है, तो ये मन लाइट नहीं है। और बुद्धि में अभिमान है तो वो भी उड़ नहीं सकता है, भारीपन है। जैसे हमारा शरीर भी भारी हो जाता है तो उसको भी बेचारे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती है ना। हल्के हैं तो अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ऐसे आत्मा को भी पंख चाहिए उड़ने के लिए। ज्ञान योग के पंख तो है, लेकिन उमंग उत्साह के पंख भी चाहिए। जब तक हमारे पास उमंग उत्साह नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। अरे छोड़ो, अमृत वेला किसने करना है? अमृत वेले बैठ तो जाएंगे लेकिन फिर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि नींद आएगी। खुशी खुशी से बैठेंगे तो आनंद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अमृत वेले भी यदि हम बैठते हैं तो लक्ष्य लेकर के बैठे। हम जब लोगों को कहते हैं कि अपने आप से बात करो, तो कहते हैं हाँ बेन, अमृत वेले हम उठते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं ना। तो मैंने कहा अमृत वेले खुद से बात करनी है या बाबा से बात करनी है? अमृत वेले हमें अपने आप को भरना है, बाबा की शक्ति से अपने आप को भरपूर करना है। जब बाबा की शक्ति से भरपूर करेंगे तो सारे दिन में कोई भी बात आएगी तो वो बातें उड़ जाएगी, क्योंकि बाबा से शक्ति ली हुई है। तो परिस्थिति हमें भारी कर देती है। कोई ऐसा है कि जिसके जीवन में कोई परिस्थिति ही ना आई हो? है ऐसा? यहां परिस्थिति आती है, और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। परिस्थिति क्या है? दूसरे की स्थिति, परिस्थिति। अगर खुद की स्थिति पावरफुल है तो वो परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है ना। हम ऊपर उठ करके देखें तो नीचे की चीजें हमें छोटी दिखाई पड़ेगी, उसके लेवल में रह करके देखेंगे तो बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए परिस्थिति को डोंट केयर भी नहीं करना है, लेकिन उससे ओवरकम करना है। हमारी स्थिति को इतनी ऊंच उठा लेनी है कि वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। परिस्थिति हमें फेल ना कर दे। एग्जाम्पल लेती हूं कि बीमारी आती है, वो बीमारी क्या है, स्वस्थिति या परिस्थिति है? क्योंकि ये शरीर की है बीमारी, तो परिस्थिति है। अभी वो बीमारी को यदि मैंने ऊपर उठ करके देखा तो वो बीमारी मुझे कितनी लगेगी, छोटी लगेगी। लेकिन मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो गई वो बीमारी से, तो क्या होगा? खुद तो डिस्टर्ब, लेकिन सारे घर को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। मैंने दादी गुलजार को देखा, बहुत अच्छी तरह से दादी को मैंने ऑब्जर्व किया। दादी जानकी को भी देखा, उन्हों के पास भी बीमारियां तो थी। ऐसा नहीं था कि दादियों के पास कोई बीमारी नहीं थी, चाहे वो बड़ी दादी हो, दादी जानकी हो, गुलजार दादी हो, बड़ी दीदी हो, कभी भी उन्हों को पूछते थे। एक बार बड़ी दादी को पूछा डॉक्टर ने कि दादी आप ठीक हो? दादी कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो कहते फिर आप हॉस्पिटल में क्यों हो? डॉक्टर कहता है, तो कहता है डॉक्टर तुमने प्रश्न क्या पूछा, आप ठीक हो, आपने ये नहीं पूछा कि आपका शरीर ठीक है या नहीं। कितना मतलब शरीर से डिटैच है ये आत्माएं। गुलजार दादी को देखा, कभी भी डॉक्टर, क्योंकि उनके डॉक्टर के पास टाइम होता था रात को 10 से 12 बजे, वो कब दादी को देखने के लिए रात को 10 बजे आता था। बॉम्बे में दादी थे तब। डॉक्टर कहता दादी आप बताओ कि आप कैसे हो? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहते नहीं दादी, आप जब तक शरीर की कंप्लेन नहीं करेंगे हम इलाज कैसे करेंगे। लेकिन उस आत्मा को पता भी नहीं चलता था कि मुझे कुछ होता है, क्योंकि वो ऊपर शरीर से ऊपर थी। तो उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं था। मैंने दादी जानकी को देखा, दादी जानकी को बहुत सारी बातें थी शरीर की, बहुत तकलीफें थी। बचपन से ही दादी बीमार थे और मैंने दादी को इन आंखों से कितनी बार, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया होता था कि अगर दादी ये सर्वाइव कर गई तो कर गई, नहीं तो चली जाएगी। ऐसा बहुत बारी हमने डॉक्टर से सुना था। और जब जब दादी को कोई ना कोई तकलीफ आती थी, हमें कहते थे कि 2 घंटा मेरे हवाले मुझे छोड़ दो, आप लोग सब बाहर चले जाओ। दादी को किसी के वाइब्रेशन भी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि हम फिर उनके शरीर के बारे में बात करेंगे, हम कोई डॉक्टर के बारे में बात करेंगे, दादी को नहीं पसंद आता था। तो कहती है मुझे 2 घंटा मेरे हवाले छोड़ दो। हालांकि तकलीफ बहुत होती थी, हम जानते भी थे, लेकिन फिर भी हम इस बात में भी दादी को सहयोग देते थे। और देखा कि वो 2 घंटे में दादी ने कोई ऐसा जादू किया अपने शरीर के ऊपर और दादी ठीक हो जाती थी। तो हमने बार बार यही बात नोट किया था कि दादी के पास जो विल पावर है, वो विल पावर उसकी बीमारी को ठीक कर देती थी, वो विल पावर से ठीक हो जाती थी। एक बार ऐसा भी समय आया, बॉम्बे में दादी को एडमिट किया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमारे साइंस में इसके लिए कोई इलाज नहीं है, आप बेशक दादी को आपके मधुबन में ले जाइए, मिरेकल ही इसको बचा सकता है। और वो घटना घटने के बाद दादी हमारे साथ 7 साल रहे, तो मिरेकल ने ही बचाया, क्योंकि दादी को अपने शरीर का भान भूल जाता था। तो आत्मा में वो ताकत है जो शरीर के बोझ को भी हल्का कर देती है। वो है डबल लाइट स्थिति। तो वो आत्माएं, मैं तो यही कहूंगी फरिश्ता कोई और नहीं था, हमारी दादियां ही फरिश्ता स्वरूप थी। उन्होंने ऊपर उठ करके पुरुषार्थ किया था। हम जब फरिश्ते की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, फरिश्ता माना फर्श से ऊपर, फरिश्ता माना जिसका किसी से रिश्ता नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो फरिश्ता माना ये शरीर से भी रिश्ता नहीं, आवाजों से परे। हमें फरिश्ता बनना है, लेकिन फरिश्ता बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, और योगी बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण सो योगी सो फरिश्ता। मैं अपने आप से पूछूं कि क्या सचमुच में ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण माना, ब्राह्मण किसको कहते हैं, हाँ ब्रह्माचार्य, और फॉलो फादर करने वाले, और संपूर्ण पवित्र, और ब्राह्मण माना यज्ञ रक्षक, ब्राह्मण माना परमात्मा श्रीमत पर चलने वाला। ये सब बातें नोट करो अपने जीवन में कि मैं सचमुच में सच्चा ब्राह्मण हूं, जिसको बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना। और हमारी पढ़ाई कौन सी है, हमारी पढ़ाई कौन सी है, बाबा की मुरली। भूल से भी मुरली मिस हो जाती है, हाँ होती है किसी की मुरली मिस, हाथ उठाओ किसी की मुरली अगर मिस होती है तो। बस एक दो तीन चार पांच छह है, अरे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं हाथ। अच्छा मेरा दूसरा प्रश्न है, हाँ मुरली मिस हो जाती है, कभी ऐसा हुआ है कि आज मैंने खाना भूल गई, हाँ आज मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे भूल जाते हो कि आज शरीर को भोजन नहीं देना, अरे आज तो मैं खाना ही भूल गई, ऐसा भूल से भी हुआ है, तो वो नहीं होता है राइट। हाँ मैं तो ये भी कहती हूं कि जब फास्टिंग करते हैं ना तो कल फास्टिंग करने आज जास्ती खा लेंगे, या तो एक साइकोलॉजी और भी है कि आज फास्टिंग किया है तो दूसरे दिन हाँ ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि कल मैंने फास्टिंग किया था ना। अब बाबा की मुरली मिस हो जाना माना हम ब्राह्मण हैं, पूछो अपने आप से। जब तक हम पूरे ब्राह्मण नहीं बने हैं फरिश्ता बहुत दूर की बात है। तो ब्राह्मण बनना है पहले, तो ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना है। कभी बैठ करके विचार सागर मंथन करना कि ब्रह्मा बाप ने कौन सी बात को अपने जीवन में धारण की थी जो मुझे करनी है। सच्चा ब्राह्मण ही योगी बन सकता है। आजकल हम अपने ब्राह्मणपने में बहुत सारी बातों में लूज हो गए हैं, यही कहेंगे। आप सब जानते हैं कि कहां कहां हम लूज हो गए हैं, अपनी धारणाओं में कैसे लूज हो गए हैं। लेकिन मुझे सचमुच में आदर्श ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बनना है, तब तब मैं योगी बन सकता हूं। और योगी योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी। मैंने कभी भी दादियों को बैठ करके योग लगाते हुए ऐसे नहीं देखा था। हाँ, अमृत वेले जाते थे दादियां सभा में, लेकिन कभी बैठ करके जैसे मेहनत करे दादियां नहीं, क्योंकि उसकी जीवन ही योगी जीवन थी। जब दादियां चलते थे तो क्या नजर आता था? हाँ, फरिश्ता चल रहा है। आपस में जब दादियां बात भी करते थे तो भी इतने ही रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करते थे। हमने दादी जानकी को ऑब्जर्व किया, उम्र में दादी बड़े थे, सबसे बड़े थे। बड़ी दादी से भी बड़े, गुलजार दादी से भी बड़े, रमेश भाई, निर्वेर भाई, ब्रिजमोहन भाई, सबसे बड़े। दादी 7 से 7:30 योग करा करके 7:30 से 8 क्लास कराते थे शांतिवन में, और 8 बजे सीधा कहती थी, चलो दादी कॉटेज चलो, गुलजार दादी के पास चलो, कभी कहेंगी चलो निर्वेर भाई की कॉटेज में। हम लोग दादी को कभी कभी कहते थे, दादी वो लोग आपको मिलने आवे ना, आप क्यों उसको मिलने जाते हैं? तो दादी क्या कहती थी पता है? चुप कर, तुम कौन होती है मुझे कहने वाली। दादी को बिल्कुल नहीं पसंद आता था ये सब बातें। हम कहते थे, दादी आप संस्था की हेड हो, आप क्यों जाती हो उसको मिलने के लिए? दादी खुद जाते थे मिलने के लिए। बड़ी दादी चले जाने के बाद भी दादी मोहिनी बेन और मुन्नी दीदी को भी मिलने जाते थे, कॉटेज में जाकर के दादी को मिलते थे, उनको मिलते थे दादी। गुलजार दादी को दादी कभी भी गुलजार दादी की नजर से नहीं देखते थे, हमेशा बाप दादा की नजर से ही देखते थे। हम जब एक दूसरों को देखते हैं तो किस नजर से देखते हैं? हमें क्या दिखाई देता है? क्योंकि हर आत्मा में गुण है ये हम जानते भी हैं, फिर भी हमें क्या नजर आता है? हमारी स्थिति कैसे बनानी है, कितनी ऊंच और कितनी पॉजिटिव बनानी है कि हर आत्मा की विशेषता और गुण दिखाई दे। हंस हमें बनना है, मोती चीगने वाला। कंकड़ और मोती तो उसको दोनों इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो क्या लेता है? हाँ, मोती। वो हमारा यादगार है। हमने किसी ने देखा है हंस को पत्थर और मोती को अलग करते हुए? नहीं, ये हमारा यादगार है, हमारा एग्जाम्पल है। बाबा हमें सिखाता है कि आपको अगर फरिश्ता बनना है तो हरेक की विशेषता दिखाई दे। अर्श पर रहेंगे तो विशेषता के बदले क्या दिखाई देगा? अवगुण दिखाई देगा। कभी कभी विशेषता दिखाई देगा, हमेशा नहीं दिखाई देगी। बाबा यहां तक कहते हैं कि कोई भी बाबा का बच्चा लास्ट में भी क्यों नहीं आया है, लेकिन वो बाबा का बच्चा है क्योंकि उसने भगवान को पहचाना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये माला के जो मणके हैं, पहला मणका और 108वां मणका, दोनों का भी उतना ही आपस में प्यार है, तभी तो माला में पिरोया। हमारा इतना एक दूसरे के साथ दिल का प्यार है, और प्यार तभी बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की विशेषता को देखते हैं, एक दूसरे की गुणों को देखते हैं। जब तक हम फर्श पर रहेंगे तब तक हमें यही बातें दिखाई देगी, पर चिंतन पर दर्शन ही दिखाई पड़ेगा। उससे ऊपर उठ जाओ, फरिश्ता माना अर्श निवासी, तो सही में थोड़ा धीरे धीरे छोटा छोटा पुरुषार्थ करो। अपने आप को आज सारा दिन में कोई ना कोई लक्ष्य से बांधो। जैसे भट्टी होती है तो बहने एक स्वमान देते हैं ना, तो वो स्वमान के ऊपर हम अभ्यास करते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ रोज अपने आप को स्वमान दो। रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो वो मुरली से एक स्वमान निकालो कि आज सारे दिन में मुझे इस स्वमान में रहना है। फिर दोपहर को चेक करो, शाम को चेक करो कि मैं मेरे स्वमान में रही। फिर रात को चेक करो। अगर हम सुबह में स्वमान लिया और रात को चेक करते हैं तो बीच में परिवर्तन की मार्जिन नहीं आती है। हर रोज का स्वमान में, हाँ मुझे पता है स्वमान होता है। हाँ तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्वमान पढ़ लिया लेकिन अभ्यास प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है। सुन करके डायरी में नोट करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में लाने के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ लिखो। लिखने से मजबूत हो जाता है। वो स्वमान को हमें पक्का करना है। लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, एक दूसरे को भी वो स्वमान से देखेंगे तो रियल में हमने वो अभ्यास किया। ऐसे ही हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता भी डबल लाइट है, तभी तो उड़ सकता है। फरिश्ता कभी भी किसी के कर्म के बंधन में नहीं आता है, तभी तो उड़ सकता है ना। वो बंधन को पकड़ करके नहीं बैठ जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, ये क्वेश्चंस फरिश्ते के पास नहीं है। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने सामने रखती हूं कि कोई भी बात आती है, पानी की तरह रास्ता बना लो। पानी कितना फ्लेक्सिबल है, जब देखता है कि रास्ते में ऊंचाई आ गई तो वो वहीं ठहर जाएगा, संघर्ष नहीं करेगा बाहर निकलने का। इतना फ्लेक्सिबल हमें बनने की आवश्यकता है। तो समय को महत्व दो, खुद को महत्व दो। हम स्वमान को इसीलिए तो रोज पक्का करते हैं क्योंकि खुद को वो स्वमान के लायक बनाए। हमने देखा दादियों के जीवन से कि कैसे वो रोज ही जैसे कि अपनी स्थिति में रहते थे। दादियों के सामने भी पेपर्स तो बहुत आए हैं, कोई ना कोई घटनाएं घटती थी। इतना बड़ा परिवार, लौकिक में तो हमारे पास 8-10 होंगे लेकिन मधुबन में तो कितना बड़ा परिवार है। लेकिन इतना बड़ा परिवार होते हुए भी दादियां लाइट थी, निश्चिंत थी। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो निमित्त अपने आप को समझना भी हल्कापन लाता है। मैं थोड़ी कर रहा हूं, जब मुझे करना है मैं कर रहा हूं तो भारीपन आएगा। लेकिन कराने वाला कौन है? बाबा है। एक बार किसी ने बड़ी दादी से पूछा कि दादी आप इतना बड़ा कारोबार कैसे कर रहे हो, कैसे संभाल रहे हो? कहती है मेरा कारोबार थोड़ी है, ये तो उसका कारोबार है, वो जाने उसका कारोबार, मैं तो निमित्त मात्र हूं, निमित्त हूं। निमित्त को इंग्लिश में एक शब्द आता है जिसको कहते इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर निमित्त का करो तो इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, हारमोनियम बजाएंगे, वायोलिन बजाएंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। जब तक क्लीन नहीं होगा तो दूसरा हारमोनी में होना चाहिए। अगर कीज ऊपर नीचे हो गई तो सुर में बजेगा या बेसुरा बजेगा, जानते हो ना सभी। तो हम भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बाबा के इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, तभी वो बाबा को उसको बजाने में सहज होगा ना, क्योंकि हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं और बाबा उसको यूज करेगा ना। अगर हम कहां ना कहां एंगेज है, ऑक्यूपाई है, बाबा मुझे यूज करना चाहता भी है लेकिन बाबा यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हम एंगेज हैं, कहां ना कहां हम ऑक्यूपाई हैं। देखो बाबा हमें यूज करे इसलिए हमें अवेलेबल रहना चाहिए, बाबा की सेवा में हम काम आए तो अवेलेबल रहना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल सुनाती हूं, चिंता मुक्त। कैसे चिंता हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। एक बार दादी जानकी ने मुझे विदेश में एक सेंटर खोलने भेजा था, मिडल ईस्ट में, बहरीन कहते हैं उसको। गुलजार दादी का प्रोग्राम बनाया था लेकिन जगदीश भाई जी सीरियस हो गए तो दादी ने गुलजार दादी को बुला लिया। अब गुलजार दादी का प्रोग्राम बना हुआ था तो दादी जानकी के सामने मैं ही होती थी, इसीलिए कहती थी अब तुम जाओ। अब दादी मधुबन में है, जगदीश भाई सीरियस है और दादी मुझे कहे तुम जाओ। मैंने कहा दादी कितने दिन के लिए जाना है? तो कहती तुम जाओ फिर बताती हूं। हम गए, जिस दिन दादी का वहां प्रोग्राम रखा था उसी दिन मैं पहुंची, क्योंकि दादी तो मधुबन आ गई, वीजा बनने में भी 4-5 दिन तो लग जाता है। उसके बाद वो सेंटर का जो मकान दादी जानकी ने किसी को निमित्त बनाया था तो वो अपार्टमेंट लिया था किराए पर, तो पहले मास में बिल आया, हमारे पास वहां का पैसा नहीं था तो बिल आया। तो हमने क्या किया, वो बिल को अमृत वेले बाबा के सामने रख दिया और बाबा को बोला कि अभी आप जानो कैसे पेमेंट करना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तो सेंटर शुरू हुआ है, 15 दिन ही हुए हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं है वहां कि वो भंडारी में डाले, अभी भंडारी भी नहीं है। तो और हमने तो बाबा को बोल दिया और हम इतने निश्चिंत हो गए कि अब बाबा भरेगा बिल। कैसे भरना है, कहां भरना है, कुछ भी ज्ञान नहीं। फिर हम किसी को कोर्स करा रहे थे, ग्रुप था 4-5 लोगों का, दादी के प्रोग्राम के बाद कोर्स शुरू किया था, तो कोर्स में कुछ लोग आते थे, अभी मैं गाइडेंस तो लूं ना कि कहां भरना है कैसे भरना है, कुछ तो हवा में तो न रहे। तो मैंने एक भाई को पूछा कि मुझे बता सकते हो कि कैसे कहां भरना है, हालांकि मेरे पास वहां का पैसा नहीं है, पैसा था लेकिन डॉलर में था, वहां का पैसा नहीं था। अब मैं सोचूं कि जिस देश में हम सेवा कर रहे हैं उन्हों की जिम्मेवारी है ना, तो वो आत्मा ने मुझे कहा कि बेन ये बिल मुझे दे देना। तो मैंने कहा कि इसका पैसा, तो कहते हैं कि मैं भर दूंगा। हमने तो बाबा को दे दिया था, लेकिन हमने कहा, हमने ये सोचा कि निश्चिंत हो जाओ, बाबा करवाता है। हम हमेशा मैं करती हूँ, मुझे करना है, तो भारीपन आता है। ऐसे कई हमने अनुभव किए हैं इस जीवन के अंदर कि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त मात्र है, ट्रस्टी है, और ट्रस्टी को अपना कुछ नहीं होता है। और मैंने यज्ञ के अंदर रमेश भाई जैसा ट्रस्टी कोई नहीं देखा है। रमेश भाई ऐसा ट्रस्टी था, आप विश्वास नहीं करो। आम की सीजन होती थी, बॉम्बे में आम पहले आ जाते हैं। रमेश भाई कहता था कि पहले आम मधुबन भेजेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। जब तक मधुबन नहीं भेजते थे तब तक रमेश भाई खुद नहीं खाते थे आम, ऐसा ट्रस्टी। मैंने बॉम्बे का रमेश भाई का अपार्टमेंट देखा, हालांकि उनके पास पैसा बहुत था, ऐसे भी नहीं कि नहीं था, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका प्रैक्टिस रही थी, लेकिन फिर भी बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहे हैं पूरा समय। बहुत जबरदस्त ट्रस्टी। जगदीश भाई ने भी, आप अगर शक्तिनगर का जो कमरा जगदीश भाई का था, एकदम ऊपर का टॉप फ्लोर का कमरा, बहुत छोटा सा कमरा, खटिए पर ही बैठ करके उन्होंने 200 किताब लिखी है। कोई अलग से ऑफिस नहीं, कोई टेबल नहीं, अपने पेट को ही टेबल बना दिया था और वह बैठ करके लिखते थे। आप सोचो, हाँ, तो ये आत्मा एक ग्रेट एग्जाम्पल है हमारे सामने। वो सचमुच में यहां कर्म बंधन ही बन करके रहे हैं, जिसको कोई कर्म का बंधन नहीं था, ऐसे ट्रस्टी बाबा के बच्चे थे। तो हमें भी यदि सचमुच में डबल लाइट स्थिति बनानी है, तो जो भी आत्मा में बोझ है, वो बोझ से अपने आप को हल्का करो। किसी को माफी देनी है तो माफी दे दो, किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांग लो, लेकिन बोझ नहीं हो बुद्धि के ऊपर। दूसरा, चिंता मुक्त अपने आप को बना लो। मैं करती हूं, मुझे करना है नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा करण करावनहार है। और तीसरा, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। जब भी कोई बात आती है ना सारे दिन में, तो अपने आप को याद दिलाओ कि अरे, मैं तो डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं डबल लाइट हूं, कोई बोझ मेरे पास नहीं है। तो ऐसे ही हम अपनी स्थिति को बनाए, एकदम हल्कापन। हाँ, हल्की चीज होती है, कोई भी चीज हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, उड़ जाती है। आत्मा भी हल्की है तो उड़ सकती है। तो अभी हम कुछ समय के लिए अपने आप को एक तो अपने आप को थोड़ा अलर्ट कर दो, हाथ में भी अगर कोई चीज पकड़ी है तो उसको साइड में रख दो। अगर बुद्धि में भी कुछ चीज पकड़ के रखी हुई है, कोई बात पकड़ करके रखी हुई है, तो उसको भी साइड में रख दो, एकदम हल्का। अपने आप को आत्म रियलाइज करें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूं। प्रकृति के मध्य में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा लाइट हूं। माइट हूं। मन और बुद्धि की उड़ान से मैं सूर्य चंद्र तारागण से भी पार अपने आप को सूक्ष्म लोक में देखती हूं। सूक्ष्म लोक में मूवी की भाषा है, इशारों की भाषा है, ये अव्यक्त लोक जहां अलौकिक आनंद है, बाबा बड़ा फरिश्ता उसके सामने हम छोटे छोटे फरिश्ते। मैं अपने आप को फरिश्ते रूप में महसूस कर रही हूं। बाबा का हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मुझ आत्मा को वरदान से भरपूर कर रहे हैं। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। शक्ति का अनुभव कर रही हूं। बाबा के सान्निध्य में एक अलौकिक अनुभव है। मैं फरिश्ता एकदम लाइट स्वरूप हूं। हम सब लाइट स्वरूप हैं, प्रकाशमय काया है। वतन में हम सब फरिश्ते बनकर के उड़ रहे हैं। ये वतन बहुत बड़ा अनंत है। प्रकाशमय काया मेरी अपनी है, कितना अनहल्कापन है। एकदम लाइट, एकदम प्रकाशित लाइट। वो लाइट का स्वरूप जो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहा है, बाबा से वो लाइट की किरणें मिल रही हैं। और शक्ति का एहसास हो रहा है। ऐसे ही लाइट स्वरूप में मैं वापस साकार मनुष्य लोक में आती हूँ। यहाँ भी मैं साक्षी होकर के पार्ट प्ले कर रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख आई हूँ। और बाबा से शक्ति भर रही हूँ।